ಗುಣಾಯನಂ ಶೀಲಧನಂ ಕೃತಜ್ಞಂ ತಾಶ್ರಯಂ ಸಂವೃಣುತೇನು ಸಂಪದಃ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಂ ಗವಾಂ ಚ ಜನಾರ್ದನ ಸಾನುಚರಸ್ಯ ಮಹ್ಯಂ ಗುಣಾಯನಂ ಶೀಲಧನಂ ಕೃತಜ್ಞಂ ಗುಣಾಯನಂ ಶೀಲಧನಂ ಕೃತಜ್ಞಂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಯಂ ಸಂವೃಣುತೇನು ಸಂಪದಃ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಂ ಗವಾಂ ಚ ಜನಾರ್ದನಃ ಸಾನುಚರಸ್ಯ ಮಹ್ಯಂ ಗುಣಾಯನಂ ಶೀಲಧನಂ ಕೃತಜ್ಞಂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಯಂ ಸಂವೃಣತೇನು ಸಂಪದಃ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಂ ಗವಾಂ ಚ ಜನಾರ್ದನ ಸಾನುಚರಸ್ಯ ಮಹ್ಯಂ ಮಾತಾಜಿ ಗುಣಾಯನಂ ಶೀಲಧನಂ ಕೃತಜ್ಞಂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಯಂ ಸಂವೃಣುತೇನು ಸಂಪದಃ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಂ ಗವಾಂ ಚ ಜನಾರ್ದನ ಸಾನುಚರಸ್ಯ ಮಹ್ಯಂ ಗುಣಾಯನಂ ಶೀಲಧನಂ ಕೃತಜ್ಞಂ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಯಂ ಸಂವೃಣತೇನು ಸಂಪದಃ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಂ ಗವಾಂ ಚ ಜನಾರ್ದನ ಸಾನುಚರಸ್ಯ ಮಹ್ಯಂ ಗುಣ ಅಯನಂ ಜಿಸ್ನೆ ಸಮಸ್ತ ಸದ್ಗುಣ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕಿಯೇ ಹೇ ಶೀಲಧನಂ ಜಿಸ್ಕಾ ಉತ್ತಮ ಆಚರಣ ಹೀ ಸಂಪತ್ತಿ ಹೇ ಕೃತಜ್ಞಂ ಆಭಾರಿ ವೃದ್ಧ ಆಶ್ರಯಂ ವಿದ್ವಾನೋ ಕಿ ಶರಣ ಗ್ರಹಣ ಕರ್ನೆ ವಾಲಾ ಸಂವೃಣತೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ತ ಹೇ ಅನು ನಿಶ್ಚಯ ಹಿ ಸಂಪದ ಸಮಸ್ತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಹೋ ಬ್ರಹ್ಮಕುಲಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗ ಗವಾಂ ಗಾಯೆ ಚ ತಥಾ ಜನಾರ್ದನ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಸ ಸಹಿತ ಅನುಚರ ಅಪ್ನೆ ಭಕ್ತ ಚ ತಥಾ ಮಹ್ಯಂ ಮುಜ್ಕೋ ಅನುವಾದ ಅವ್ರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ಕೆ ದ್ವಾರ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ಜೋ ಭೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗುಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ಲೇತ ಹೇ ಉಸೆ ಸಂಸಾರ ಕಾ ಸಾರಾ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಜಾತ ಹೇ ಯೋ ಗುಣ ಹೇ ಸದಾಚಾರ ಕೃತಜ್ಞತಾ ತಥಾ ಅನುಭವಿ ಲೋಕೋ ಕಾ ಆಶ್ರಯ ಅತ ಮೇರಿ ಚಾಹ ಹೇ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಅಪ್ನೆ ಪಾರ್ಷದೋ ಸಹಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ್ ಗೌವೋ ತಥಾ ಮುಜ್ಪರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ರಹೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಪೂಜಾ ನಮೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ಸ್ತುತಿ ಸಿತ್ ಕಿ ಜಾತಿ ಹೇ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇ ಕಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ತಥಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆ ಸಾಥಿ ಗೌವೋ ಕಾ ಸಮ್ಮಾನ ಎವಂ ಪರಿಪಾಲನ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ದೂಸರೆ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಜಹಾ ಕಹೀ ಭೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ತಥಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೋಗಿ ವಹಾ ಗೌವೆ ತಥಾ ಉನ್ಕಾ ಸಂರಕ್ಷಣ ಹೋಗಾ ಜಿಸ್ ಸಮಾಜ ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಹೀ ಹೋತಿ ವಹಾ ಗೌವೋ ಕೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಶು ಸಮಜ್ಕರ್ ಉನ್ಕಾ ವಧ ಕರ್ ದಿಯಾ ಜಾತಾ ಹೇ ಪ್ರಥು ಮಹಾರಾಜ್ ದ್ವಾರಾ ಗವಾಂ ಶಬ್ದ ಕಾ ವಿಶೇಷ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹೇ ಕ್ಯೋಕಿ ಭಗವಾನ್ ಸದಾ ಸೇ ಗಾಯೋ ಎಂ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ರಹತೆ ಆಯೇ ಹೇ चित्रों में भगवान कृष्ण को सदैव गायों तथा ग्वाल बाल एवं गोपियों के साथ दिखाया जाता है। अतः प्रभु महाराज ने सानुचरस्य शब्द का प्रयोग किया है, जो इसका सूचक है कि वे अपने अनुयायियों तथा भक्तों के साथ रहते हैं। भक्त में देवताओं के सारे गुण आ जाते हैं। वह गुणायनम अर्थात समस्त सद्गुणों का आगार होता है। उसकी एकमात्र संपत्ति सदाचरण है और वह कृतज्ञ होता है। ब्राह्मणों तथा वैष्णवों का एक गुण भगवत कृपा के लिए कृतज्ञता है। प्रत्येक व्यक्ति को श्री भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि वे समस्त जीवात्माओं का पालन करते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जैसा कि वेदों में कठोपनिषद 2:2-13 कहा गया है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। परमेश्वर जीवात्माओं की सारी आवश्यकताएं पूरी करता है। अतः जो जीवात्मा भगवान के प्रति कृतज्ञ है वह निश्चय ही सद्गुणों से पूर्ण है। इस श्लोक का वृद्धाश्रय शब्द भी महत्वपूर्ण है। वृद्ध से ज्ञान में बढ़े चढ़े व्यक्ति का बोध होता है। वृद्ध पुरुष दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिनकी आयु अधिक होती है और दूसरे वे जो ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं। कोई आयु बढ़ने से वृद्ध नहीं हो जाता, जो ज्ञान में बढ़ा चढ़ा होता है वही वास्तव में वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध। वृद्धाश्रय का अर्थ हुआ वह व्यक्ति जो ज्ञान में बड़े चढ़े गुरुजनों की शरण ग्रहण करता है, ब्राह्मण के समस्त गुणों को अर्जित कर सकता है और जिसे सदाचारी बनाया जा सकता है। जब कोई सचमुच सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है, भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञ होता है तथा प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, वह सारे ऐश्वर्य से समन्वित होता है। ऐसा व्यक्ति ही ब्राह्मण या वैष्णव होता है। अतः प्रतु महाराज भगवान के पार्षदों, भक्तों, वैष्णवों, ब्राह्मणों तथा गवों सहित भगवान के आशीर्वाद की याचना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो महाराज प्रथु जो वेन महाराज जो अच्छी प्रकृति के नहीं थे उनसे उनका जन्म हुआ। अंग महाराज और ये उन्हीं के ग्रैंडफादर हैं। तो उनके तो वो अपने सभासदों को लेकर के बैठे, सभी सभासद जितने भी ऋषि मुनि ब्राह्मण वैष्णव वर्ग थे और वो अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं। वो उन लोगों के द्वारा उनको बतला करके कहते हैं कि ब्राह्मण या वैष्णव गौ भगवान के भक्त और भगवान इनकी स्तुति करना चाहिए, इन्हें आदर देना चाहिए, इनकी सेवा करना चाहिए और इनके आशीर्वाद से जो भक्ति मिलेगी उससे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। मतलब आपको भक्ति भगवान के धाम में जाना कुछ भी दुर्लभ, यदि आपको सब कुछ पाना है तो आप इन चारों की सेवा कीजिए। और वो कहते हैं कि मैं भी सदा, मतलब पिछले श्लोक में कल ही आप लोगों ने सुना कि ब्राह्मणों की चरण धूली मुझ पर निरंतर पड़ती रहे, ब्राह्मणों के सिर के चरणों में मेरा सिर हमेशा अवनत रहे, झुका रहे और उनके आशीर्वाद से मैं आप सब लोगों का संरक्षण जो मेरा कर्तव्य है वो मैं कर सकूं। तो 21वें श्लोक से ये 44वां श्लोक, ये जो आखिरी श्लोक है, प्रथु महाराज ये अपने सभासदों को एक तरह का व्याख्यान दे रहे हैं, तो मैं आपको वो क्या कहते हैं इनका थोड़ा सारांश बतलाऊंगा। ये चैप्टर तो और भी आगे है, पर ये उन्होंने अपना उपदेश दे करके अपना वाणी को बंद किया। तो ये 21वें श्लोक में दिया है, जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें कि हमें क्या करना है। इसीलिए वो संत समाज में आए और उन्होंने निवेदन किया। अब उन्होंने क्या निवेदन किया इस बारे में बताया जाता है, भगवत कृपा से श्लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है कि अपनी मर्यादा में रखें, मतलब वर्णाश्रम धर्म में रखें, क्षत्रिय क्षत्रिय का पालन करें, ब्राह्मण ब्राह्मण का करें, वैश्य अपना जो जो भी उनके मतलब अपने वेदों के अनुसार जो उनके कर्तव्य हैं वो अपने कर्तव्य करते हुए रहें, तो उससे राजा का भी प्रसन्नता होती और प्रजाजन भी उससे संतुष्ट होंगे। तो राजधर्म का यथोचित पालन करने से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। अतः पुंभीर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागश स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, कि ये कहा कि ये द्विज कि वर्णाश्रम धर्म जो ये भगवान के द्वारा विभाजित किया गया है, जैसे हमारे शरीर में सिर का डिपार्टमेंट है, आर्म का डिपार्टमेंट है, बेली का डिपार्टमेंट है और लेग पैरों का डिपार्टमेंट है, इसी तरह से भगवान ने अलग अलग लोगों की मति इच्छाओं के अनुसार चार तरह के वर्णाश्रम धर्म बतलाए हैं। तो वो राजा कहता है कि जो अपने सभी वर्णाश्रम धर्म में रहे और भगवत स्तुति, भगवान के भक्तों का संग और उनकी सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और गौ सेवा, ये यदि करते हों तो उससे सब कुछ सिद्धि मिल जाएगी और ये भगवान का को प्रसन्न करने का कारण भी होगा। और जो राजा केवल कर ही वसूल करता है वह प्रजा के पाप का भागी होता है, वह ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। जैसे कि वेन महाराज वो कर ही लेते थे, प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे, इसलिए उनका नाश हुआ और सब कुछ ऐश्वर्य उनके हाथ से चला गया। अतः प्रिय प्रजाजन, भगवान को हृदय से याद करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। तो ये राजा उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मेरी बात को हृदय में धारण कीजिए, तो आप मेरी प्रार्थनाओं का अनुमोदन कीजिए। किसी भी कर्म का फल उसके कर्ता उपदेष्टा, उपदेष्टा यानी जो उपदेश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, वह समर्थों को समान रूप से मिलता है। मतलब कोई किसी गलत बात का भी अनुमोदन करेगा, उसका पालन करेगा, तो उसका फल भी नतीजा भी गलत होगा। इसलिए अच्छी बात का पालन करना, उसी का अनुमोदन करना, उसी का आदेश लेना, ये तो ये तीनों समान हैं। जैसे चोरी करने में चोर ही नहीं, उसको जिसने चोरी करने के लिए आगे बढ़ाया है, जो उससे बेनिफिट लेने वाला है, उन सभी को समान रूप से दंड मिलता है। तो और कर्मों के फल देने वाले यज्ञपति भगवान ही हैं, इसकी पुष्टि ये सभी जो मैं पढ़ रहा हूँ या आपको बतला रहा हूँ, ये सभी प्रथु महाराज अपनी प्रजाजनों से कह रहे हैं। तो ये क्योंकि ये वेदों में, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, वो कहने लगे कि मनु, उत्तानपाद, प्रियव्रत, अंग, प्रहलाद, बलि, इनके द्वारा भी इसकी बात की पुष्टि होती है। मेरे पिता वेन मोहग्रस्त हो गए थे, इसलिए वो उसका पालन नहीं कर सके, इसलिए उनका विनाश हुआ है। भगवत चरण कमलों की सेवा से असंख्य जन्मों का मनोमल शीघ्र धुल जाता है। जन्म जन्म से जो हमारे शरीर में, हृदय में जो मैल जमा हुआ है, मतलब मैल यानी हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, तो जैसे गंगा में स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, इसी तरह से भगवान के चरण कमलों की सेवा से हमारे कृष्ण चेतना का विकास होता है, कृष्ण की ओर हम अग्रसर होते हैं, हम भक्त बन सकते हैं। एक ही बार जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने पर भक्त कभी भी संसार में लौटना नहीं चाहता, और वो कभी भी जो भी उसने चरण ग्रहण की है वो हमेशा आगे ही बढ़ता जाएगा, वो कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, थोड़ा भी स्वल्प धर्म भगवान की भक्ति को किया उसका कभी भी विनाश नहीं होता। संसारिक सब वस्तुएं नष्ट होने वाली है, नष्ट होगी, पर भगवत भक्ति कभी भी नष्ट नहीं होती। इसलिए आप सभी खुले मन से वचन, देह, कर्म आदि से भगवान की भक्ति करो। श्री भगवान दिव्य हैं, बद्ध जीव के लाभ हेतु मंत्रों, अनुष्ठानों, यज्ञों, यज्ञ स्वीकार करते हैं। तो भगवान को इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को आवश्यकता है। इनके अनुष्ठान से भगवान प्रसन्न होते हैं और हम भगवान की ओर अग्रसर होते हैं। भगवान कई रूपों में आते हैं, भगवान मूर्ति के विग्रह के रूप में, जैसे पिक्चर्स यहाँ लगे हुए हैं, इनके पेंटिंग के रूप में, भगवान अपने भक्तजनों के माध्यम से, उन्होंने कई तरह के तीर्थ स्थापित किए हैं उनके माध्यम से, या भगवान की कथाओं के माध्यम से, और इस तरह से ऋषि मुनियों के माध्यम से, कई माध्यम से भगवान आते हैं और वो बद्ध जनों को यहाँ से छुड़ाने के लिए कटिबद्ध रहते हैं और उनकी बहुत तरह से सहायता करते हैं। चाहिए हमारी तीव्र इच्छा, यदि हमारे तीव्र न भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम, तीव्र यदि इच्छा होगी तो हम भगवान की ओर मुड़ सकते हैं। अभी जो बद्ध जीव हैं, हम सभी बद्ध हैं, संसार में बंधे हुए हैं। किससे बंधे हुए हैं? तीन तरह के गुणों से, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से हम बंधे हुए हैं। इनसे यदि हमें छुटकारा पाना है तो हमें भगवान की भक्ति करना होगा, उसके अलावा और भी कोई रास्ता नहीं है। भगवान यानि तदिया नाम समाचरित, भगवान यानि भगवान के भक्त, भगवान की जो प्रिय वस्तु हैं, जैसे गायों को, भगवान गायों को प्रेम करते हैं, तो गायों की या वैदिक धर्म की, उन्होंने ये वर्णाश्रम धर्म बनाया इसकी भी, तो इन सब की हमें स्तुति करना चाहिए, उसमें हमें भाग लेना चाहिए, उसे हमें पालन करना चाहिए। जैसे कहा गया है ब्रह्मार्पणम, ये भगवद्गीता का श्लोक है 4:24, ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मतलब कि ब्रह्म ही ब्रह्मार ब्रह्म को अर्पण करना है, ब्रह्म ही हवि है यानी जो अग्नि में डालते हैं, ब्रह्माग्नो अग्नि भी ब्रह्म है और ब्रह्म को ही हम आहुति दे रहे हैं, और इस तरह से हम ब्रह्म की ओर जाते हैं। मतलब ये संसार जो है ये भगवतमय है। ऐसा कोई कहानी में अभी कोई मुझे कुछ ही रोज पहले सुना रहा था कि एक चोर चोरी करने जाता है, तो उसे भी आप ब्रह्म ही मानो, जिसकी चोरी की वो भी ब्रह्म है, जो चोरी का जो धन कमाया वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही चोरी भी करवाता है, ब्रह्म ही प्रोटेक्ट भी करता है। तो वास्तव में देखा जाए यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र च मई पश्यति, जो मुझे सब जगह देखता है, सबको मुझ में देखता है, मुझे सब में देखता है, तेषाम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति, उससे मैं दूर नहीं हूँ और वो मेरे से दूर नहीं है। मतलब वो भगवान के हृदय में है, मतलब हमें सब जगह, क्योंकि भगवान जो है अंतर्यामी रूप से, परमात्मा रूप से सब में है, तो हमें बाहरी सीन नहीं देखना है, हमें अंतर से ये समझना है कि ये भी भगवान का अंश है, भगवान इसमें है, और उनमें गलत बुद्धि नहीं होना चाहिए। ये अपने कर्म के अनुसार हमें किसी से बुराई मिलती है, किसी से अच्छाई मिलती है, पर इस पर ध्यान न दे करके, मतलब ये अपना प्रारब्ध हमने पूर्व जन्म में कुछ किया था उसके कारण से हमें भुगतना पड़ रहा है, मतलब वही हमें कर्म देने के लिए या लेने के लिए शत्रु रूप में भी आता है, मित्र रूप में आता है, कई तरह से आते हैं, जिससे अपना गहनो गति है, कर्म की गति बहुत गहन है। तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, अपनी साधना में अपनी भक्ति में लगे रहना चाहिए। जैसे अलग अलग अग्नि, ये सब अलग अलग श्लोक देवे, अपने श्लोक पर अभी हम आते हैं, तो अलग अलग कास्ट के रूप से अग्नि भी अलग अलग तरह की दिखाई देती है, मतलब प्रकट होती है अग्नि भी। वैसे ही भगवान में उन यज्ञ आज्ञा आदि क्रियाओं से फल रूप से अनेक प्रकार से जान पड़ते हैं, कभी किसी को कुछ रूप में आते हैं, किसी को कुछ रूप में आते हैं, पर आने वाले वो भगवान ही हैं, अलग अलग रूपों में आते हैं। तो भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी तथा भोक्ता हैं, आप अपने अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा करो, इस तरह आप मुझ पर अनुग्रह कर रहे हो। तो वो धन्यवाद दे रहे हैं कि यदि आप अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने यज्ञों के स्वामी की यदि उन्हें भोक्ता मान करके उनकी सेवा करेंगे तो आप मुझ पर बहुत ही एहसान कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ब्राह्मण व वैष्णव पर राजकुल अपना शौर्य विक्रम धन तेज ऐश्वर्य आदि द्वारा अपना प्रभाव न डालें, मतलब कि ये राजा लोग सिर्फ एक कंट्रोल करने के लिए नहीं होते, उनकी रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए होते हैं, तो उन्हें उनकी भक्ति बढ़ाना चाहिए। हम भगवान की सेवा करते हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गोप ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, मतलब वो भगवान स्वयं नमस्कार थे, ब्रह्मण्य देवाय, ब्रह्मण के देवता भगवान स्वयं है और वो गो ब्राह्मण के हित के लिए आते हैं, गाय और ब्राह्मण के हित के लिए आते हैं, तो हमें उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करना और बिना हिचक के ब्राह्मणों व वैष्णवों की सेवा जो करते हैं, भगवान उन लोगों से अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं। अब ये 40वें वर्ष में दिया है, ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की नियमित सेवा करने से मनुष्य के हृदय का मल दूर होता है और इस प्रकार परम शांति तथा भौतिक आसक्ति से मुक्ति मिलती है। मन में जो आसक्ति है, आसक्ति यानी अटैचमेंट जो हो जाता है, उसके कारण से हम इस संसार में पड़े रहते हैं। कई चीज हमारे मन में जो वासनाएं हैं, इच्छाएं जो हैं, एक तो कर्म करते हैं और जो वासनाएं हैं, तो कर्म करना उतना खराब नहीं जितनी वासना। ये वासना भगवत भक्ति से ही दूर हो सकती है। वासना ने हृदय में जो इच्छाएं रहती है, तो वो इच्छाएं जन्म जन्मांतर साथ देती है। आप जो कर्म हैं उन्हें आप दूर कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कि इसका संग आप दूर कर सकते हैं, पर जो गलत संग करने की जो इच्छाएं हैं या वासना है, उसे दूर करना बहुत ही कठिन होता है। उसका एकमात्र उपाय भगवत भक्ति है, जो ब्राह्मणों की, वैष्णवों की, गुरु की और गाय की सेवा के द्वारा दूर हो सकती है। मतलब भगवान को प्रसन्न करके ही ये दूर हो सकती है, मतलब भक्ति के द्वारा। इस संसार में ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर कोई सकाम कर्म नहीं, क्योंकि उससे देवता प्रसन्न होते हैं, जिनके लिए उनके यज्ञों की संस्तुति की जाती है। तो इसी तरह से जो ब्राह्मण लास्ट वर्ष, जो इससे पहले के जो वर्ष है, जो ब्राह्मणों की चरण धूलि को सदैव सिर पर चढ़ाए रखते हैं, उस मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। वह संपूर्ण गुण उसकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास समस्त संपदाएं अपने आप आ जाती है। अतः प्रथु महाराज आशा करते हैं कि मैं ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। तो ये तो गिस्ट या सार जो प्रथु महाराज ने जो उपदेश दिया, उसका मैंने आपको सार बताया है। पर इसमें मुख्य रूप से सदाचार यानी अच्छे आचरण, जो सदाचारी हैं उनकी सेवा करना, और ये ब्राह्मण या वैष्णव क्या है, वैष्णव में क्या गुण होना चाहिए, इनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा चर्चा करूँगा कि सदाचार क्या है, वैष्णव के क्या क्या गुण होना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में दिया गया है, सर्व महागुण वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकल संचारे। तो वैष्णव के देह में सब महत्व गुण रहते हैं। महत्वगुण महत यानी बहुत बड़े गुण रहते हैं। और बड़े गुण क्या हैं कि भक्ति की कृपा से श्री कृष्ण भक्त के देह में, श्री कृष्ण मतलब जो जो भगवान, भक्ति की कृपा से भगवान में जो जो गुण हैं, वो सभी गुण उनमें आ जाते हैं। सब गुण ही संचारित रहते हैं। तो कृष्ण गुण सकल संचारे, कृष्ण के सभी गुण, ये मतलब थोड़ी मात्रा में, कृष्ण के जो कई गुण हैं तो वो थोड़ी मात्रा में भक्तों में आ जाते हैं। सब गुण तो नहीं, जैसे कल ही महाराज ने बतलाया, गौरकृष्ण महाराज ने, कि भगवान की सृष्टि करने की, मान लो ये गोवर्धन पर्वत उठाने की या संहार करने की, ये शक्ति कभी भी जीव में नहीं आ सकती। पर जो दूसरे जो वैष्णव में जो गुण हैं, वो भगवान से ही आते हैं। यशास्ति भक्तिर भगवत अकंचिना सर्वैर गणेर सत्र समासते सुरा हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेना धावतो सो भई धावतो भई। यानी जो भगवान के भक्त हैं, अकिंचना भक्ति, अकिंचन किसे कहेंगे, अकिंचन का मतलब निष्कामा, फलाभिसंधान शून्य, जिसमें कोई फल की अभिलाषा नहीं हो, अकिंचन। तो निष्काम भक्ति, तो मतलब फल अनुसंधान क्या होता है, लोग फल सोचते हैं, भुक्ति मुक्ति आदि तरह की वासनाएं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जो सिद्धि मुक्ति भुक्ति कामी है वो हमेशा ही अशांत रहता है, पर जो निष्काम है, जो कृष्ण भक्ति, एक निष्काम हो सकता है। दूसरे कोई भी देवी देवताओं की पूजा करने वाला, वो कभी भी निष्काम नहीं हो सकता। या और किसी तरह के अनुष्ठान करने वाला, उसके मन में कुछ कुछ रहता है, मुझे ये मिले तो मैं आपका ये करूँगा, मतलब मान्यताएं जैसे लेते हैं, उनमें कई तरह की कामनाएं रहती हैं, वासनाएं रहती हैं, वो कभी भी शांत नहीं हो सकते। वो इस संसार में ही फल भोग करके वो समाप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति ऐसी जो हमेशा कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है। तो हराव अभक्त, तो समासते सुरा यानी समासते यानी सम्यक रूप से उसमें सब गुण निवस्त करते हैं, मतलब सद्गुणावली कभी भी भक्तों को त्याग नहीं करती। भक्त में वो सद्गुण हमेशा ही रहेंगे, और जो भक्त अभक्त हैं वो भक्त की कृपा से वंचित रहते हैं। तो भक्ति रानी की कृपा से ही सब महद्गुण का आविर्भाव होता है। और जो अभक्त रहते हैं, मनोरथेना वे मन रूपी रथ पर सवार होकर के असति एंड असत विषय में, असति जो सत नहीं है, सत किसे कहेंगे, भगवान ही सत्य हैं, कृष्ण ही सत हैं। तो वो कृष्ण से जो विमुख रहते, असति जो भगवान की ओर नहीं है, वो वही बाहर की चीजों में, हमसे बाहर की चीजें क्या हैं, संसार की, धन, घर, गेह, देह, पति पत्नी या जो भी हैं, ये असत हैं, क्योंकि ये अनित्य हैं। असत जो सत यानी जो हमेशा इटर्नल शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं और शाश्वत चीज के संबंध से ही, क्योंकि हम यानी आत्मा शाश्वत है, इटर्नल है, हमेशा रहती है, तो वो सत चीजों के संसर्ग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सत यानी भगवान या उनके भक्त या भगवान की सेवा, इन्हीं से हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो भगवान के बही है ना, बाहर दौड़ना, धावत है ना, धावित होते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो अनित्य विषय सुख के लोभ में भगवान से बाहर की ओर भागते रहने के कारण भक्ति की कृपा से, राधा रानी की कृपा से वे वंचित रहते हैं, क्योंकि उनमें भुक्ति मुक्ति वासना है, वे भक्ति की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। जो बाहरी चीजों के लिए दौड़ता है, विषय वासना के लिए दौड़ता है, वो कभी भी धावतो सो बही जो है, उसमें कोई भी गुण नहीं होते। हराव अभक्तस्य कुतो महद्गुण, उसमें कौन से महद्गुण है, क्योंकि वो कोई भी गुण हो, भले बड़ी पोस्ट हो, बड़ा विद्वान हो, मतलब सांसारिक दृष्टि से बहुत सब कुछ, मतलब पॉलिटिकल में बहुत हाई लेवल का हो, पर जिनमें भक्ति नहीं है, वो सभी टेम्पररी है, वो नाश होने वाली है, और उससे न उस व्यक्ति का कभी फायदा है, न किसी संसार का फायदा है। तो यही सब गुण है वैष्णव लक्षण, सब कहा ना ही जाए करी दिग्दर्शन। तो कुछ वैष्णव के जो गुण होते हैं मैं संक्षेप में आपसे कहूंगा, ये 29 लक्षण चैतन्य चरितामृत में बतलाए गए हैं। कृपालु, अकृत द्रोह, सत्य सारसम, निर्दोष वदान्य, मृदु सुचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत, कृष्णेक शरण, अकाम अनीह स्थिर, विजित षट गुण, मित भोक, अप्रमत्त, मानद अमानी, गंभीर करुण मैत्र, कवि दक्ष मौनी। तो इन चीजों को भले हमें ये न हो, पर यदि उनको प्राप्त करने की इच्छा करेंगे, हम आगे उनमें बढ़ेंगे, तो ये नहीं, हमें जानना जरूरी है कि कौन से गुणों को हमें अपने में लाना है। यदि ये पता ही नहीं होगा कि हमें ये गुण लाना है या ये चीज़ खराब है, तो हम गलत ओर जा सकते हैं। इसलिए इन गुणों का वर्णन करना या हृदयंगम करना ये जरूरी है। कृपालु मतलब दूसरों के दुख मोचन की जैसी इच्छा होती है, कृपा या दया है। कृपालु यानी दूसरों में यदि कोई दुख हो तो उसे दुख दूर करने की जो इच्छा होती है वो कृपालु है। अकृत द्रोह जो किसी का भी द्रोह नहीं चाहते, अनिष्ट नहीं चाहते, मतलब किसी से भी द्रोह जो नहीं करते, अनिष्ट किसी का नहीं करते, अनिष्ट यानी शत्रुता जो नहीं करते। सत्य सार सत्य वाक्य बोलते हैं, सत्य आचरण करते हैं, सत्य ही सार वस्तु है और बाकी सब असार है। सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए, जो सार है, सार वास्तव में कृष्ण ही है, थोथा यानी जो तुच्छ है उसे अलग रखो, अपने में न लाइए। और सम समय ने किसी स्पेशल के प्रति आसक्ति नहीं, किसी प्रति विद्वेष नहीं, सब में समान व्यवहार रखना सबके प्रति, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं, सब में भगवान परमात्मा रूप से निवास करते हैं, इसलिए समान रूप से व्यवहार करना। पर इसका ये मतलब नहीं कि समान रूप से जैसे है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चै व सोपाके च पंडित समदर्शिना, पंडित सम रूप से रहते हैं, पर ये नहीं कि शेर है तो आप उससे गले मिलने के लिए जाएंगे या सर्प है तो आप उसके मुंह में हाथ डालेंगे, ये नहीं है। इसका मतलब यही कि सब में है और सबके प्रति दया दृष्टि दीजिए, किसी से एक्सप्लाइटेशन या उनसे फायदा विशेष लेना या किसी से शत्रुता मन में रखना ये ठीक नहीं। वो दोष शून्य रहते, निर्दोष है ना, उसमें कोई फॉल्ट नहीं होती और वो फॉल्ट फाइंड भी नहीं करते। वदान्य नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत विषय नम। तो वदान्य का क्या मतलब, अतिशय दानवीर, अतिशयता, जिसे चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े दानवीर हैं, इतना अवधड़ दानी है कि सबको कृष्ण प्रेम बांट रहे थे, किनको, जिनकी इच्छा हो, जिनमें लेने की इच्छा हो उनको उन्होंने फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया। मृदु यानी सॉफ्ट नेचर, कोमल स्वभाव वाले, दक्षिणांग और वामांगी, राधा रानी वामांगी है, वो मृदु नहीं है कभी, वो कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने के लिए वो इस तरह से करती है, ये हम लोग वैसे नहीं कर सकते, हमें मृदु रहना है जैसे कि राधा रानी। और दूसरी तरफ कौन है, राइट, नहीं, एक तो राधा रानी और दूसरी तरफ मैं भूल रहा हूं नाम, हाँ चंद्रावली। तो चंद्रावली हमेशा सॉफ्ट स्वभाव वाली, कोमल स्वभाव वाली है, और राधा रानी भगवत प्रेम के लिए वो थोड़ा कटु दृष्टि, मतलब ऐसे तिरसी दृष्टि से देखती है। वैसे भगवान से प्रेम तो बहुत करती है, तो दक्षिण कोमल स्वभाव वाला, मतलब जो भगवान और उनके भक्त लोग करते हैं उनका हमें मतलब अक्षरशः पालन करना जरूरी नहीं है, ना हम कर सकते हैं, क्योंकि वो जो कर जाते हैं वो स्पेशल, क्योंकि भगवान के डायरेक्ट एसोसिएट हैं। जैसे शंकर भगवान विष पी गए थे, विष का पूरा समुद्र पी गए थे, हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें उनकी जो शिक्षाएं हैं उन्हें लेना चाहिए, न कि उन्हें अक्षरशः उनके जीवन चरित्र को फॉलो करना। अकिंचन, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया वे अकिंचन है। सर्वों का कारक यानी सर्व उपकारक, सबका उपकार करते हैं। प्रशांत, जिनकी बुद्धि श्री कृष्ण में निष्ठा प्राप्त, मतलब वो पीसफुल हैं। क्यों शांत है? कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि वो कृष्ण के भक्त हैं इसलिए वो शांत हैं। कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी विषय में जिनकी बुद्धि नहीं जाती वही प्रशांत हैं, मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत, सब तरह से शांत हैं। स्निग्ध स्वभाव, अचंचल स्वभाव, कृष्ण का शरण, मतलब जिन्होंने कृष्ण के शरण के अलावा सब कुछ छोड़ दिया, कृष्ण के शरण है, कोई भी उनका आश्रय नहीं है। अकाम यानी इंद्रिय तृप्ति की वासना से शून्य जो है वो अकाम है। अकाम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार दी, यदि अकाम या सब तरह के कामनाएं हो तो भी भगवान के पास जाइए, कृष्ण की ओर जाइए। इसलिए कि कृष्ण हमारी जो कामुकता है, कई तरह की इच्छा है, उन्हें वो समाप्त कर देते हैं। इसीलिए लोग कृष्ण के पास नहीं जाते, क्योंकि यदि इच्छाओं को पूरा ही खत्म ही कर देंगे तो आदमी कहेगा मैं, इसलिए देवी देवताओं के पास में लोग जाते हैं ज्यादा करके, क्योंकि वो इच्छाओं को पूरी करते हैं, पर वो गलत इच्छाओं से हम संसार में फंस सकते हैं। तो देवी देवताओं की प्रार्थना करने से, उनकी सेवा करने से हम इस संसार में रह जाते हैं, और भगवत भक्ति से, कृष्ण भक्ति से हम संसार से निकल करके भगवत धाम में जा सकते हैं। हम क्योंकि शाश्वत आत्मा है, भगवान के अंश हैं, तो बिना अंशी की सेवा की हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते, कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। जो आनंद हम जो ढूंढ रहे हैं तो वो आनंद हमें भगवान के श्री चरणों की सेवा में ही मिलेगा, ये सांसारिक विषय वासना में हमें आनंद नहीं मिल सकता। मतलब आत्मा कभी भी तृप्त नहीं होगी, कितना भी उसे मिल जाए, कितना ही वो आगे बढ़ जाए संसार के लोगों की दृष्टि में, पर वो अशांत ही रहेगा। और अंत में जैसे प्रभुपाद कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू भले ही प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, पर वो स्विट्जरलैंड में एक कुत्ते का जन्म उन्होंने लिया, ये प्रभुपाद का लिखा हुआ है, मतलब वो कह रहे हैं, तो वो सही है, उसे सही मानना चाहिए। तो कितने भी यहाँ ऊंचे संसारिक दृष्टि से बन जाए वो व्यक्ति हमेशा ही उसकी दुर्गति होती है। तो हमें भगवान को प्रसन्न करना है। अनीह यानी श्री अनीह यानी विषय में चेष्टा शून्य, कृष्ण सेवा के अतिरिक्त और भी, मतलब डू नॉट एक्ट अदर देन कृष्ण, जो स्थिर हैं, मतलब अविचल भाव से प्रारब्ध कर्म जो होते हैं, टॉलरेट जो भी कुछ आता है अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार उसे सहन करते हुए भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। मतलब हमें जो पूर्व जन्म में जो कुछ किए हैं वो कुछ न कुछ रूप में फलीभूत होते हैं प्रारब्ध रूप में, तो उन्हें सहन करना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों से विचलित होना, तो वो स्थिर, इस तरह उसे स्थिर कहते हैं। विजित सद्गुण, मतलब छह तरह के जो गुण हैं, जो दोष हैं, सद्दोषों को जिन्होंने विजय कर लिया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, या क्षुधा हंगर पिपासा थर्स्ट जरा वृद्धावस्था व्याधि शोक और मोह लेमेंटेशन हैंकरिंग, इनको जो जिन्होंने छह को जीत लिया है उसे विजित षड्गुण कहते हैं। मितभोग, जो बहुत सीमित परिमाण में भोजन करते हैं, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मितभोग। अप्रमत्त, जो मत्तता से शून्य, मतलब फ्री फ्रॉम मैडनेस, जो अति सुख में ही और अति दुख में उन्मत्त नहीं हो जाते। अति सुख हुआ तो एकदम पागल जैसे उछलते हैं, नाचने लगते हैं, और दुख हुआ तो एकदम रोने लगे कि बाबरा जैसे संसार ही खत्म हो गया। तो इस तरह से जो, तो वो अप्रमत्त नहीं होते, मतलब संसारिक सिचुएशन में जो प्रमत्त नहीं होते, सावधान रहते हैं। और मानद, जो दूसरों का अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदाहरी, तो ये वैष्णव के कुछ गुण पढ़ रहा हूँ, तो वो दूसरों को सम्मान करते हैं। क्यों सम्मान करते हैं? कि जीवों का, कि जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, कृष्ण का अधिष्ठान समझकर सब जीवों का सम्मान दे, इस वाक्य को जो पालन करते हैं वे मानद हैं। और अमानित जो स्वयं को तृणादपि तृण के समान समझ करके किसी से सम्मान प्राप्ति की इच्छा नहीं करते हैं। गंभीर यानी जिसके मनोगत भाव दूसरे नहीं जान सके, अपने मन में क्या भाव है दूसरे नहीं जाने, वो गंभीर होता है। करुण यानी दूसरे के दुख को जो सहन नहीं कर सकते वो करुण है। मैत्र यानी मित्र भावपन्न, जिनके कोई भी शत्रु नहीं है, अजात शत्रु, अजात शत्रु है ना, जो पैदा ही जिसके शत्रु नहीं हुए है, भगवान को अजात शत्रु नाम से भी जाना जाता है। और कवि यानी श्रुति मधुर और सुंदर भाव, मतलब ये वो इस जो फीलिंग के साथ में जो बोलते हैं उनमें श्रुति मधुर और सुंदर अर्थ वाक्य विन्यास में जो पटु हैं उनको ये कवि कहते हैं। दक्ष यानी कार्य कुशल, दुष्कर कार्य को भी जो शीघ्र कर ले वो दक्ष है। और मौनी यानी वृथा वार्तालाप नहीं करते, यानी कि वो बोलेंगे नहीं, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि की कथा के अतिरिक्त अन्य बातों को जो नहीं बोलते हैं वो मौनी। यह मौनी बाबा जी बनते हैं पर उनके मन में न जाने क्या क्या भाव आता रहता है। तो मौनी का मतलब ये नहीं कि जो बोले ही नहीं, या पट्टी पर लिखेंगे, या किसी से बात नहीं करेंगे। बात करें तो आप भगवान के नाम गुण लीला इन्हीं का आप विस्तार से वर्णन कीजिए। और दांत, और दांत का कहीं कहीं वदान्य की जगह दांत लिखा गया है। दांत यानी जो अनहैप्पीनेस जो होती है उसे टॉलरेट करते हैं, सहनशीलता जिनमें रहते हैं, कि दुष मतलब क्लेश जो दुसह है, जो सहन करने से भी ज्यादा है, उसे भी जो सहन कर लेते हैं उसे दांत कहते हैं। तो भागवत में भी ऐसे ही दिया हुआ है। ये सब वैष्णवों के या ब्राह्मणों के क्वालिटी है। तितिक्षव कारुणिका सुहृदत सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव सर्वभूषण। तो ये जो साधु के ये सब भूषण है और वो महत सेवा करते हैं। महत सेवा द्वारम आहुर विमुक्ति तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्वय सर्वद साधवो वे। तो इनमें साधुओं के द्वार बतलाए गए, जैसे कमरे में आने के लिए आप दरवाजा से अंदर आते हैं, इसलिए साधु संघ भगवान के वहाँ जाने का द्वार है। साधुओं का संग करना का मतलब कली महाराज ने बतलाया था, संग करना है उनके सुनो, उनकी सेवा कीजिए, उन्हें प्रसन्न कीजिए, ये एक तरह का संग हुआ। प्रकृष्ट रूपेण संग, संग यानी सिर्फ साथ में रहने से ही आप बैठ गए साथ में, वो संग नहीं है। उनकी शिक्षाओं को आप सुने, अमल कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनसे सुनने की इच्छा प्रकट कीजिए। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज लेक्चर दे रहे थे राधा कुंड पर, तो उनके सब भक्त तीर्थाटन के लिए या अलग अलग जगह देखने के लिए चले गए, पर भक्ति वेदांत स्वामी जी वो उनके पास बैठ करके सुने और उन्होंने कहा कि तुम बहुत अच्छे सुनने वाले हो। तो उन्हीं की कृपा से उनके आशीर्वाद उन्हें मिले और वो देश विदेश में भगवत भक्ति को फैला सके। तो महत सेवा जो है, महत यानी महापुरुषों की सेवा या भगवत भक्त साधुजनों की सेवा, ये मोक्ष का खुला द्वार है, माया बंधन से मुक्ति का। मोक्ष है ना, माया बंधन से मुक्ति का द्वार है, पर द्वार रहने वहीं वो खत्म नहीं हो जाता। द्वार रहने जाने का आपने प्रवेश किया, पर उसका अंत क्या है? भगवत प्रेम, भगवत चरणों की सेवा। मतलब जो समचित्ता है, जो भगवत भक्त कौन है? समचित्त मतलब जो समान अभेददर्शी, भेद उनमें नहीं है, प्रशांत रूप से चित्त जो निष्प्रह है, विमन्वय यानी जो क्रोधहीन है, डू नॉट गेट एंग्री, और सबके श्रोध हैं, श्रोध साधव विमन्वय श्रोध साधवो ये लो। तो ये उनके गुण बतलाए हैं। पर तमो द्वार, और तम का द्वार यानी अंधकार में, या तम यानी आप नर्क वगैरह योनि में गिरने का द्वार क्या है? योषिता संगी संगम, जो स्त्रियों का संग या स्त्रियों का जो संग करता है, स्त्री संग और स्त्रियों के संगी का जो संग करता है, वो अपने लिए तम का द्वार, अंधकार का द्वार खोलता है। तो ये दोनों तरह से यहाँ बतलाए हैं। तो ये ऋषभदेव अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि महापुरुषों की सेवा को ही भगवत प्राप्ति का द्वार बताया है, और स्त्री संगी के संग को संसार का द्वार बताया। संसार यानी पुत्र, वित्त, धन, या इस तरह से ग्रह, दारा, ये सभी मतलब ये स्त्रियों के लिए किसी आदमी में अटैचमेंट होना और आदमी के लिए स्त्री में अटैचमेंट होना। पर अटैचमेंट होने का मतलब ये है कि उसके बिना रहा न जाए, वही एक पर साथ में नहीं रह सकते, ऐसा नहीं। मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बतलाऊंगा। तो साधु संघ ही एक भक्ति का मूल है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ। कृष्ण प्रेम जन्मे ते हों पुण्य भक्त मुख्य अंग। कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार तुम्हारा शक्ति आसे। मतलब भगवान की भक्ति डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है कि आप माला जपने लग गए या और कुछ नवदा भक्ति में हुए। वो भगवान ने भक्तों के हाथ अपने आप को बेच दिया है, तो जिसे भगवान को देना चाहे जो साधु, उसे भगवान मिल सकते हैं। भगवान बहुत बड़े हैं, उनकी हम सेवा या उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि यदि कोई बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हो और तो उसे आप किस रूप में गिफ्ट देकर के या कैसे, उसके तो कई नौकर चाकर हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। पर उसके साथ यदि कुत्ता चल रहा हो और कुत्ते को आप थपथपाएंगे तो वो व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति वो प्रसन्न हो जाएगा। तो जो भगवान के भक्त रहते हैं वे भी एक भगवान के कुकुर हैं, कुत्ते हैं, और उन्हें प्रसन्न करने से मतलब भगवान के पीछे पूँछ हिलाते हुए चलते हैं, मतलब भगवान की ही सेवा में लगे रहते हैं। तो उनको प्रसन्न करने से मतलब भगवान के भक्तों के प्रसन्न करने से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। मतलब वही एकमात्र द्वार है। क्या है द्वार? ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संघ। उसके जन्म का मूल, मूल यानी जड़ जो है साधु संघ से क्या होता है, मतलब कृष्ण भक्ति कैसे मिलेगी साधु संघ से, ये मैं थोड़ा बतलाऊंगा कि मायाबद्ध जीव के चित्त में कृष्ण भक्ति उन्मिश्रित होने का एकमात्र कारण साधु संघ है। कैसे आएगी वो भक्ति, कैसे पैदा होगी? तो साधु संघ से होने से हमेशा वहाँ भगवत कथा होती है, इससे चित्त की मलिनता दूर होती है और इससे भक्ति के उन्मेष की सुविधा होती है, भक्ति का करने की अपनी इच्छा होती है। सो साधु पुरुषों के आचरण देखकर उसी प्रकार के आचरण करने की प्रवृत्ति होती है, किंतु उसी प्रकार के आचरण में प्रवृत्ति होने से ही भक्ति का उन्मेष नहीं होता। भक्ति का उन्मेष का एकमात्र कारण है महत कृपा। मतलब तीन तरह की कृपा है, मतलब भक्तों की कृपा भी होना, सिर्फ आपने उनसे सुन लिया, उनके आचरण देख लिए, उनमें प्रवृत्त हुए, ये नहीं, पर उसके साथ ही साथ उनकी कृपा भी चाहिए। जैसे नारद मुनि अपने एग्जाम्पल से कहते हैं कि मैंने साधुओं का संग किया, उनकी मैंने सेवा की, उनसे मैंने सुना और उनकी कृपा से मन में भक्ति का उदय हुआ। मतलब कृपा भी होना जरूरी है। तीन तरह की कृपा होती है हम बद्ध जीवों के लिए। एक तो आप में तो मतलब महा क्या 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 तीन चीज़ें क्या हैं? भगवत भक्तों का संग, भगवत भक्तों की आसक्ति। तो आसक्त संग यानी आसक्ति होना, संग का मतलब तो उनके ये लक्षण दिए गए हैं। देख हम जो बद्ध जीव हैं तो एक तो साधन से हम बद्ध जीव से मुक्ति पा सकते हैं, एक कृष्ण कृपा से मुक्ति हम भगवान बद्ध जीव से मुक्ति हो सकते हैं, या वो कृष्ण कृपा यानी किसके थ्रू आती है? साधुओं के संग से, साधुओं के संग से कृष्ण कृपा। ये इसीलिए भागवत में दिया हुआ है कि महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमनवय सुहृद साधवे। साधुओं के और भी लक्षण बतलाए गए हैं कि कृष्ण प्रेम जन्मे कृष्ण हृदय में भक्ति उन्मिश्रित होने का प्रधान हेतु साधु संग ही है। कृष्ण प्रेम उत्पन्न होने का प्रधान साधन भी साधु संग ही है। हेतु कारण भी साधु है और उसका साधन भी साधु संग है। और तो कृष्ण भक्ति उत्पन्न होने का मूल यानी प्रधान साधन भी साधु संग ही है। मुख्य अंग और तो मुख्य अंग और गौण अंग तो दोनों ही साधु संग से ही वो मुख्य अंग साधुओं का संग होना। और जैसे तो इससे क्या होता है कि भक्ति की कृपा से और साधुओं की कृपा से चित्त की मलिनता दूर होती है, चित्त शुद्ध उज्ज्वल हो जाता है। जैसे कोयले, अब काले कोयले पड़े हैं और एक ज्वलित कोयला है, तो साधु एक ज्वलित कोयले की तरह है। और जो अपने हृदय में कलुषित है, कलुषित पना, यदि आप कोयलों में यदि आप फूंक मारते रहेंगे, हवा देते रहेंगे काले कोयलों में, मतलब ज्वलनशील नहीं है, तो वो ज्वलित होंगे क्या? पर यदि एक ही कोयला जो ज्वलित है उसे इस कोयले के ढेर में फेंकेंगे तो पूरा वो ज्वलितमान प्रकाशमान हो जाएगा। तो इसी तरह से एक ही साधु के संग से, जैसे प्रभुपाद के संग से कई लोग प्रज्वलित हो उठे, मतलब भक्ति मार्ग में आगे आ गए। तो ये मायाबद्ध जीव का जो चित्त जो ढका हुआ है, मतलब चित्त जो कलुषित है, उससे पार पाने का एक ही उपाय है और वह उपाय है साधु का संग। साधु संग के बिना अनेक चेष्टाओं से भी जीव के चित्त से विषय वासना दूर नहीं हो सकती, चित्त निर्मल उज्ज्वल नहीं हो सकता। तो एक तरह का श्लोक भागवत में इसका प्रमाण दिया हुआ है, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनश्च तरह च्युत सत् समागम सत्संगमो यरि तदेव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मतिः। मतलब श्री कृष्णों को लक्ष्य करते मुचुकुंद महाराज कहते हैं कि संसार में भ्रमण करते करते जब कोई व्यक्ति संसार जिसका शयनमुख होता है तब उसको भगवत भक्त का संग मिलता है, और भगवत भक्त संग मिलता है तभी भक्ति की कृपा से साधु संघ की एकमात्र गति, मतलब तो भगवान में रति उत्पन्न होती है। तो भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त का पराधीन हूँ, मतलब भक्त की कृपा से भक्त के अनुगत भगवान भी भक्त एक अनुगता है, मतलब भगवान भक्तों को फॉलो करते हैं। तो भगवान भी भक्त अहम भक्त पराधीन हो, भक्त ही भगवान की गति होने के कारण जिस व्यक्ति के प्रति उनके भक्त की कृपा होती है उस व्यक्ति के प्रति उनकी भी कृपा होती है, क्योंकि भगवान भक्त का फॉलो करते हैं। तो यदि भक्त की कृपा मिलेगी तो भगवत कृपा भी अपने आप मिलेगी। तो कृष्ण यदि कृपा करे कौन भाग्यवान है, गुरु अंतर्यामी रूपे सिखाया आपने, तो गुरु और अंतर्यामी रूप से हमें सिखा रहे हैं आप। ऐसे तो कई भागवत से कि उनमें क्या क्या गुण होना चाहिए वैष्णव में, और वैष्णव सेवा से क्या मिलता है, क्या फायदा होता है। एक भागवत में श्लोक है, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृत्करण रसायना कथा तज्जोष्णाद अपवर्ग वर्पनी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमश्यति। तो अपवर्ग किसे कहते हैं, अपवर्ग पवर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग यानी मोक्ष को कहते हैं, और पवर्ग प फ ब भ म, ये पवर्ग है। प यानी परिश्रम बहुत ज्यादा है संसार में, पवर्ग है संसार में। प फ फेनिल मुंह से झाग निकलता है, भ यानी भय और मृत्यु, ये पवर्ग है। और अपवर्ग यानी कृष्ण के चरणों में रति, कृष्ण के धाम में जाना या मोक्ष, ये संसार से सागर से मुक्त हो जाना। तो ये धीरे धीरे इस तरह से, तो ये सताम प्रसंगान संतों का संग करने से प्रकष्ट रूप में, प्रसंग प्रसंग है मतलब प्रकष्ट रूप से संग, साधारण संघ की अपेक्षा घनिष्ठ संघ। साधारण संघ में क्या होता है, आप पास जाएंगे बैठेंगे, साधुओं का आचरणों को देखेंगे तो उनसे सुनेंगे भी, पर प्रकष्ट संघ में साधु की परिचर्या होती है, सेवा परिचर्या आदि द्वारा उनकी प्रीति संपादन होता है। तो इससे क्या होगा, हृत कर्ण रसायन कथा, तो ये हृदय में और कर्ण में भगवान की हरि कथा वो उत्पादित उत्थापित होगी, हरि कथा उसमें जम जाएगी कि भगवान इतने गुणगान वाले हैं, इतने गुणों वाले हैं। तो हत कर्ण रसायना, तो उनमें प्रीति और तृप्ति सहित सुनी जाती है और बार बार सुनने की इच्छा होती है। और ये हरि कथा श्री हरि के वीर्य सम्मित, इन कथाओं के हरि के वीर या महिमा की बात सम्यक रूप से जानी जाती है। अतः ये सब कथाएँ सुनने से श्री हरि के कारुण्य और पतिउद्धारण आदि गुणों में लोगों के चित्त में आकृष्ट होते हैं और श्रद्धा का जन्म होता है कि भगवान इतने पतित पावन हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयावान हैं। तो वो भगवान की भक्ति में लगेगा, उनमें श्रद्धा होगा, और श्रद्धा धीरे धीरे करके श्रद्धा आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, तो ये सब होते होते भगवान के में रति और उसके बाद में भाव प्रेम ये सब डेवलप होगा। तो ये सभी ये कैसे होता है, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम। तो धीरे धीरे ये, तो ये सताम प्रसंगान मम वीर संविदो, संतों के प्रसंगान यानी प्रकृष्ट रूप से संग से आपकी कथाओं में सुनने की रुचि होगी, क्योंकि साधु लोग कथा ही कहेंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, तो उससे धीरे धीरे आप में भक्ति का उदय होगा और भगवत प्रेम तक हो जाएगा। अपवर्ग वर्तमनी, भगवान को अपवर्ग वर्तम कहते हैं। अपवर्ग यानी अपवर्ग मैंने बताया, पवर्ग और अपवर्ग, अपवर्ग यानी मोक्ष, वर्तम यानी मार्ग। तो ये अपवर्ग वर्तम में पथ वो मतलब जो अग्रसर होने में भक्ति के मार्ग में मतलब मोक्ष का जो द्वार खोल देते हैं पथ है वो वर्तम यानी अपवर्ग यानी मोक्ष की तरफ जो रास्ता दिखाते हैं वो अपवर्ग वर्तमनी वो भक्त लोग होते हैं। पर वो भक्त, अब ये वैष्णव आचार्य के बारे में थोड़ा आपको बतलाऊंगा संक्षिप्त में, समय कम है। तो ये दो बातों पर, सदाचार, ये दो बातों पर, एक तो वैष्णव के क्या आचरण है, उनकी क्यों सेवा करना चाहिए, कैसे भगवत भक्ति उनसे मिलेगी, और वैष्णव के आचार क्या होते हैं, सदाचार क्या है। तो सदाचार के बारे में ये चैतन्य चरितामृत में क्या दिया गया है, असत संग त्याग ये वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्तार। मतलब क्या है कि सदाचार और असदाचार, जो सिद्धि के अनुकूल हो वो सदाचार है, अपने उद्देश्य के अनुकूल हो, और उद्देश्य के जो प्रतिकूल हो वो असदाचार है। अपना उद्देश्य यदि तो उसे सुआचार और दुराचार, दुराचार या असदाचार, उसे दुराचार भी कहते हैं। तो जैसे तो रोग जब चिकित्सा जब उद्देश्य हो तो कुपथ्य, जैसे हमें रोग से दूर होना है, मान लो पेट के डाइजेशन ठीक नहीं है तो हमें मतलब उस तरह का खाना चाहिए जो हमें तो वो पथ्य है। तो पथ्य और कुपथ्य, यदि हम गरिष्ठ भोजन करते रहेंगे तो पेट की बीमारियां ज्यादा होगी। तो इसी तरह से भगवत भक्ति में भी कुछ चीजें जो करने की हैं वो आचार या सदाचार है, जो छोड़ना है वो निषेध है, उसे नहीं करना चाहिए। जैसे सन्निपात के रोग में जो डाव यानी कच्चा वो नारियल वो कुपथ्य है, पर जब डायरिया हो तो डायरिया में वो डाफ सुपथ्य है। तो इसी तरह से जो लोग जिन्हें मतलब सदाचार यानी विधि और निषेध जो दिया हुआ है, तो भगवान को वैष्णव के ग्रंथ जो सदाचार क्या है ये एक ही श्लोक में दिया हुआ है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, जिससे विष्णु का स्मरण होता रहे वो हमेशा सदाचार विस्मर्तव्य न जाते और उन्हें कभी नहीं भूलना। यही सब विधि और निषेध इनमें सब आ गए। भगवान को जो न भूलें वो चीज करें जिससे भगवान को हम भूलें नहीं, वो सभी सदाचार है। जिससे हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की विस्मृति होती है, भगवान से दूर हो जाते हैं, वे सभी उन्हें छोड़ना चाहिए। विस्मर्तव्यो न जातुचित, ये विधि और निषेध, वो निषेध है यदि जिन चीज़ों से भगवान की सेवा से हम विलग हो जाते हैं, जैसे ग्राम्य चर्चा से या और किसी तरह का जाप करने से, जैसे शराब बेचना, मांसाहार, जहाँ जीव हत्या होती है, तो हम भगवान कैसे प्रसन्न होंगे अपने जीवों की हत्या से। तो इस तरह से कामों से यदि हम दूर होंगे तो हम भगवान, तो इन चीज़ों को छोड़ देना, तो उससे हम भगवान की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो सत जो है, सत्संग, सत्संग का मतलब क्या है, ये अस धातु से, सत यानी अस धातु से सत्संग निष्पन्न है। अस यानी अर्थ में, सत का अर्थ हुआ जो है, यानी जो हमेशा है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। अस यानी जो है यानी कहाँ, कैसा है, हमेशा के लिए जो है, मतलब जो भगवान कृष्ण है वही सत एकमात्र वस्तु, वही आदि। और उनके जो तदिया नाम, उनके जो जन है, भगवत भक्त हैं, वो भी सत है, तो उनका संग करना, सत्संग। तो ये कृष्ण का संग या वैष्णव का संग या हमारी काम्य वस्तु है, और इनसे जो अपोजिट हमें ले जाता है वो असत है। तो एक तो ये असत संग, जो सत नहीं है उनका संग ही असत संग है। और असत का मतलब क्या हुआ, संग यानी आसक्ति, जो मैंने बताया अटैचमेंट। श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तु का साहचर्य, अन्य वस्तु में आसक्ति, तो ये साधन भक्ति के अनुष्ठान के अतिरिक्त अन्य कामों का अनुष्ठान, अन्य कार्यों में आसक्ति भी असत संग है। तो ये आत्माराम श्लोक की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु ने 61 रूप में आत्माराम श्लोक की व्याख्या की। तो उसमें एक व्याख्या में कहा है, दुसंग कहिए कहता हो आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, किसी तरह की कृष्ण भक्ति के अलावा और कामना करना ये असत है, ये गलत है, ये दुसंग है, असत संग है। मतलब कृष्ण काम भक्ति की कामना के अलावा और कोई कामना होना, बाहर की किसी भी वस्तु या लोक संग की अपेक्षा कामना का संग, मतलब देखो बाहर की वस्तु या लोक का संग भी आंतरिक कामना की अभिव्यक्ति मात्र है। तो ये जो कामना जो है यही हमें संसार में हमें रखे रखी है। इस संसार में हम क्यों हैं, अलग अलग कामनाओं के कारण से, अलग अलग इच्छाओं के कारण से अभी संसार में, और कई जन्म लेते रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक ये लेने का कारण क्या है, हमारी कई तरह की इच्छाएं, भगवत भक्ति के अलावा कई तरह की दूसरी कामनाओं के कारण से हम संसार में अनेकानेक जन्म लेते हैं। तो जन्म से हमें यदि दूर होना हो तो हमें ये असत संग या गलत तरह की कामनाओं से दूर रहना है, क्योंकि ये बहुत ही घनिष्ठ होती है। ये मतलब किसी लोगों के संग वो तो दूर कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बतलाया था, पर ये जो कामना है ये हृदय के अंदर रहती है, और जहाँ भी जाएंगे, किसी भी योनि में जाएंगे, वो कामना साथ में रहेगी। आपकी कामना मतलब फाड़ करके किसी का मांस खाने की है तो आपको भगवान चीता बना देते हैं, नग्न रहने की, शरीर दिखाने की इच्छा है तो झाड़ बना देते हैं। तो इस तरह से कई तरह की योनि हम लेते हैं, ये कई तरह की कामनाओं के कारण से हैं। इसलिए कामना यदि होना है तो हमें भगवत भक्ति की, भगवान के भक्तों के संग की या भगवान की सेवा की ही इच्छा होनी चाहिए। इच्छाओं का दूर नहीं कर सकते, इच्छा रहेगी, पर इच्छा सत इच्छा होना, भगवान सत यानी भगवान कृष्ण, उनकी इच्छा होना। तो ये वैष्णवाचार में कई तरह के आचरण हैं। तो अब स्त्री संगी का मतलब ये नहीं कि अपनी मतलब किसी और स्त्री पर अपनी भी पत्नी में अटैचमेंट नहीं होना, ये चैतन्य महाप्रभु ने कई तरह से बतलाया है। यस, हाँ, साथ में रह सकते हैं। आप कहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के कई परिकर वो मतलब मैरिड थे, रहते थे, पर उनमें उनका अटैचमेंट नहीं था। ऐसा नहीं कि उनके बिना रह नहीं सके, या अटैचमेंट का मतलब कि उनसे काम वासना की इच्छा, तो वो नहीं होना तब तक तो ठीक है। पर ये स्त्री मात्र में आसक्ति नहीं होना, स्त्रियों को आदमी में, आदमियों को स्त्रियों में अटैचमेंट नहीं होना, इसका उन्होंने, क्योंकि क्या है कि स्त्रियां देव निर्मित माया है और माया से इस उद्धार पाना बहुत कठिन है। देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्या, ये भगवान ने स्त्रियों को इसलिए बनाया ही विशेष तरह से कि स्त्रियों के संसर्ग में जाना ही संगत नहीं है। पुरुष को विरक्त सौर निष्काम मानकर स्वयं भी, तो वो क्या होता है कि स्त्री में अटैच आदमी फिर नेक्स्ट जन्म में स्त्री बनता है, फिर वो अटैच और करता है पुरुष से। तो इस तरह से ये पहले स्त्री बना, फिर पुरुष बना, फिर स्त्री बना, फिर पुरुष बना, ये कई अन्य योनियों में हम भटकते रहते हैं। तो इनसे यदि हमें छुटकारा पाना है तो हमें अटैचमेंट से दूर रहना पड़ेगा। तो दोनों का, स्त्री और पुरुष दोनों का वैष्णव में या आचार समान अधिकार है भक्ति मार्ग में। इसलिए दोनों को इन संघ से, आसक्ति से दूर होना है। जैसे शिवानंद सेन वो गृही थे और वो स्त्रियों के संसर्ग में भी आते थे, तो क्या वे असाधु थे? तो ये कहा जाता है गृह रहने पर भी स्त्रियों में आसक्त नहीं थे, स्त्री संगी उनको नहीं कह सकते। और वो भक्त परिवार के थे, भक्त परिकर थे, वो सहधर्मी उनकी थी पर वो भगवत परिकर की थी, मतलब ये सभी उनका भगवान की लीला में स्थान है। तो हम उनकी तुलना हम नहीं कर सकते कि वो ऐसे स्त्रियों के साथ रहते थे, हम भी रहे। रामानंद राय स्त्रियों को सिखाते थे, उनका ड्रेसिंग करते थे, उनका मेकअप करते थे, पर उनमें कभी भी ऐसे कोई अटैचमेंट नहीं था। मतलब यदि कोई व्यक्ति बिना अटैचमेंट के, जैसे कृष्ण को कहते हैं कि वो सदैव ब्रह्मचारी हैं, और जो दुर्वासा मुनि जो कई थाल खा जाते थे वे मतलब उन्होंने जैसे कोई भोजन ही नहीं किया, वो निराहारी हैं। मतलब एक बार यमुना जी को पार करना था तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आप पार करने के लिए दुर्वासा का सेवा करना चाहते हैं, ये मंत्र बोलो, कृष्ण सदा ब्रह्मचारी। उनका कृष्ण भगवान तो कई स्त्रियों के साथ खेलते हैं, नाचते हैं, वो ब्रह्मचारी कैसे? पर उनके मन में आसक्ति नहीं थी, वो बिना आसक्ति रहित वो। और भी कई कारण हैं, और दुर्वासा ने इतना खाया पर उनके खाने में कोई अटैचमेंट नहीं था, स्वाद के लिए वो नहीं खाते थे, उन्होंने दिया, अर्पण किया, उन्होंने खा लिया। तो अटैचमेंट नहीं होना ये हमें समझना है। और कोई भी मतलब मतलब कि ये अटैच्ड है इसलिए उसकी अवज्ञा करना या निंदा करना ये हमें नहीं देखना है, क्योंकि सब में परमात्मा, जैसे मैंने बतलाया कि सबको दंडवत वैष्णव करेगा, ब्राह्मणादि चंडल कुकुर अंत करी दंडवत करीबे का बहुमान्य करी। मतलब उन्हें यही से वैष्णव धर्म सबारे प्रणति। अब मैं एक ही आप लास्ट बात आपको कि जो वर्णाश्रम का हम जो बात कर रहे थे अलग अलग, तो पर यहाँ दिया हुआ है यही सब छाड़ी आर वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हया लय कृष्णेर सुन। मतलब वर्णाश्रम धर्म भी आपको बाधक हो सकता है कृष्ण की भक्ति में। वो कैसे ये मैं आपको थोड़ा बतलाना चाहूँगा। वर्णाश्रम ये तो भगवान के ही द्वारा प्रणीत है, तो ये वर्णाश्रम धर्म से आप भगवान की भक्ति से विमुख कैसे हो सकते हैं? तो वर्णाश्रम में हमें अटैचमेंट रहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं कमाऊँगा, तो इस तरह से। पर भगवान की सेवा में सब कुछ न्यौछार करना पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसे, जब रामानंद राय ने बोला साध्य साधन निर्णय में, तो उन्होंने इसे एक्सटर्नल, ये बाई है, एहो बाई है कह करके उन्होंने उसे छुड़वा दिया कि ये वर्णाश्रम द्वारा, मतलब वर्णाश्रम धर्म का यह काल और परकाल की भोग्य वस्तुएं मिलती है। उसका लक्ष्य क्या है कि हायर लोकों में जाना, पर भगवत भक्ति वर्णाश्रम का लक्ष्य नहीं है। यदि लक्ष्य ही नहीं है उसे प्राप्त कैसे करेंगे? इसलिए हम लोगों का लक्ष्य बहुत ऊंचा होना चाहिए। मतलब भगवत भक्ति का लक्ष्य भगवान के चरणों की सेवा, तो कुछ न कुछ तो आप ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे, पर लक्ष्य ये कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं, खूब इंद्रिय भोग करूंगा, तो वो आप कभी भी भगवत भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये वासना जब तक रहेगी ये काल और परकाल की भोग्य वस्तुएं मिलने की, तब तक आपको भगवत कृपा नहीं मिलेगी। तो भुक्ति मुक्ति, जैसे ने बतलाया भुक्ति मुक्ति स्प्रहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख शास्त्र कथम अभ्युदय भवत, उसका अभ्युदय कैसे होगा? तो वर्णाश्रम धर्म भी, और दूसरा मतलब हमें शरणागति लेना है तो अकिंचन, अकिंचन गोचर भगवान अकिंचन, किसी के प्रति हमारा अटैचमेंट नहीं होना। अकिंचन गोचर मतलब अपने आप को बहुत दीन हीन समझना और भगवान के प्रति ही लक्ष्य होना। ये मैंने आपका थोड़ा विशेष समय लिया, पर यहाँ प्रभु महाराज ये श्लोक जो दिया हुआ है उनके द्वारा वो यही बतलाना चाहते हैं कि वैष्णवों की भक्ति करना, ब्राह्मणों की सेवा करना और उनके चरण रज को सिर पर रखना, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने चार चीजों का, गायों का, वैष्णव या ब्राह्मणों का, जो भगवान के भक्त हैं उनका संग, और भगवत संग भगवान के भक्तों का संग, इन चार चीजों की सेवा से, संग से, मैंने प्रकृष्ट रूप उनके मतलब उनके उनसे आप यदि आसक्त होंगे, उनसे आपका अटैचमेंट रहेगा, तो आप भगवान मतलब गायों से अटैचमेंट मतलब गायों की सेवा करना, भक्तों का संग करना मतलब भक्तों से सुनना, उनकी सेवा करना, उन्हें प्रसन्न करना, ये यदि होगा तो आपका द्वार भगवान के धाम में या भगवान की भक्ति या प्रेम मिलने में आपके लिए खुल जाएगा। और यदि आप असत संग करेंगे मतलब इनके इन लोगों की सेवा नहीं करेंगे, एक तरह का असत संग ही है, संसारिक संग है, उनसे हमें संसार में फंसेंगे या संसार से बाहर नहीं निकल सकते। हरे कृष्णा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो या कोई और जिज्ञासा हो या